सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अंजुम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम नदीम।
अंजुम एजुकेशन पे हम कुछ बात कर चुके हैं पर एजुकेशन मेरा ख्याल है जो हम भूल जाते हैं ना अक्सर वो है बच्चों की एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी और वो लोअर लेवल एजुकेशन जिसके बारे में हमें तकरीबन कुछ भी नहीं पता। और मैं तो बड़ा इसमें कॉन्शियस हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, ये सब्जेक्ट आपको क्या इसके बारे में तासुर है आपके?
नदीम ये तो बुनियाद है तालीम की और यहाँ पे अगर सही तालीम ना हो तो बाद में आप कितनी भी मेहनत करें तो कुछ नहीं हो सकता, तो इस पे बात करना बहुत जरूरी है।
आप क्या लम्स में फील कर रहे थे इसकी कोई जरूरत महसूस, या आप लम्स में कवर कर लेते सब खामियां?
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कवर नहीं कर सकते। और जितनी कमजोरियों के साथ तालिबे इल्म वहां आते हैं वो 4 साल तक उनके साथ रहती है और बाद में भी उनके साथ रहती
है। तो आज मैंने कोशिश की है एक बहुत ही हमारी क्या कहते हैं एक हमारा जेंडर बायस भी थोड़ा रिमूव हो। हमने कोशिश किया एक और औरत को पकड़ने की, पहले हमने समिया से बात की थी, आज हमने मिसेज रूही हक को पकड़ा है। ये है तो मेरी कज़न बट माशाल्लाह बड़ी होनहार औरत हैं। इन्होंने कोई 1984 से लेके अब तक कंसिस्टेंटली पढ़ाती आ रही हैं और ये बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में रही हैं। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की बड़ी नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया है। इन्होंने स्कूल सेटअप भी किए हैं, इन्होंने स्कूल्स में बीकन हाउस की डायरेक्टर ऑफ स्टडीज भी थी, करिकुलम भी बनाए, टीचर ट्रेनिंग भी बहुत की हुई है, स्कूल्स की वैल्यूएशन भी की हुई है, किताबें भी लिखी हुई हैं। यानी कि ये प्राइमरी एजुकेशन के सिस्टम के अंदर रही हैं, पढ़ाया भी है और दिलो जान से उसको ये अभी तक उसमें दिलचस्पी लेती हैं। तो मिसेज हक वेलकम।
थैंक यू।
तो हम आपसे सीखना चाहेंगे कुछ। मुझे तो एज ए सेट के प्राइमरी एजुकेशन का बहुत कम पता है, जरूर मानते हैं जरूरत है। तो ये पहले बताइए कि आपने बीकन हाउस के साथ काम किया, तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है माशाल्लाह बड़ा, मेरा तो ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम बन चुका है, इसकी जरा ब्रीफली हमें थोड़ी कहानी तो बताएं कि ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इतना बड़ा हो गया और इसका किरदार क्या है पाकिस्तान की एजुकेशन में?
देखिए बीकन हाउस उस वक्त पाकिस्तान में आया जिस वक्त के एजुकेशन नेशनलाइज हो चुकी थी और भुट्टो साहब के जमाने में जब सारा ये स्कूल सारे नेशनलाइज हो गए तो उस वक्त बड़ी सख्त जरूरत थी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की। और मिसेस कसूरी, मोना कसूरी ने ये छोटी सी नर्सरी अपने घर में खोली थी, अपनी मदर के घर में, वहां से उन्होंने ये इतने सारे स्कूल्स बनाए। सो ये छोटी सी फैमिली क्या एक औरत का एक ख्वाब था जो कि आज अब आज दुनिया का जैसे आप कह रहे हैं सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम बन गया है। इसमें उनकी डायनामिज्म, उनका एक बिजनेस एक्यूमन जो कि उनको पता था बिजनेस के बारे में क्योंकि वो रफी मुन्नू की बेटी हैं और सईद सैगल की निवासी हैं, उनके ब्लड में था ये और उन्होंने इसको एक एजुकेशनल वेंचर के तौर पर शुरू तो किया एक बड़े सोशल अंदाज में और छोटे छोटे स्कूल बनाए और उसके बाद फिर वो इतने तरक्की किए, वो स्कूल्स इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने फिर उसको एक बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम बना दिया। पाकिस्तान में इस तरह का स्कूल सिस्टम ये पहला था और उसके बाद फिर इतने ज्यादा और स्कूल सिस्टम पैदा हुए और अब इस वक्त पाकिस्तान की जो एजुकेशन का हाल है, अगर ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम ना हो तो पाकिस्तानी बच्चे ना कहीं बाहर पढ़ सके और ना कहीं अपना नाम पैदा कर सके।
यानी कि आप कह रहे हैं कि तो मेरा स्कूल की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हाँ, उनके बगैर जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो हमारे बच्चों को इस काबिल नहीं बना सकते कि वो बाहर जाके पढ़ सके।
बिल्कुल बिल्कुल
माशाल्लाह। तो ये बताइए बीकन हाउस के पास इस वक्त कितने स्कूल होंगे और कितने बच्चे होंगे?
बीकन हाउस के पास इस वक्त 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं सिर्फ बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में और उनका जो एजुकेटर्स का प्रोजेक्ट है उसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे उसमें भी हैं। तो अगर आप काउंट करें तो ये तो 2-2.5 लाख बच्चों से ऊपर ही बन
सिस्टम है। उनका तो न्यू स्कूल भी तो है जो छोटा है पर उसमें भी बच्चे हैं।
जी वो जो TNS है, वो जो द न्यू स्कूल है, वो एक बिल्कुल ही टोटली एक रेडिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया था रेजियो एमिलिया फिलॉसफी पे जो कि एक इटालियन फिलॉसफी है।
पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में और बाहर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो इसकी इसका मतलब एजुकेशन की डिमांड तो बहुत है पाकिस्तान में, मतलब लोग पैसे दे के और माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे दे के।
नदीम आप यकीन करें कि जब मैं स्कूल की हेड थी, प्राइमरी स्कूल मैंने चलाया 11 साल पिंडी में, तो माँ बाप कहते थे कि बेशक आपके पास जगह नहीं है, टाट पे बिठा लें हमारे बच्चों को, लेकिन दाखिल हमने यहाँ करना है। और ऐसे ऐसे केसेस आते थे कि माए मेरे पास आके कहती थी कि हमारे पास खाने को इतने पैसे नहीं है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं ताकि कल को वो बाहर चले जाए, अपना नाम बनाए, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। और पाकिस्तान की एजुकेशन जो कि इतनी कई जगहों पे पॉकेट्स में अभी भी इतनी अच्छी है, यूनिवर्सिटीज हमारे पास कई इतनी अच्छी हैं, लेकिन माँ बाप का एक ख्वाब बन गया है कि बच्चे हमारे पढ़ें लिखें प्राइवेट स्कूल से और बाहर जाएं, ये क्यों है?
नहीं तो ये क्या इसका हमारे पब्लिक स्कूल में फिर क्या खामी है? अब इस वक्त माशाल्लाह सारे बच्चे, सारे लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे भेज रहे हैं, पब्लिक स्कूलों में अभी तक हालात ख़राब हैं, और पाकिस्तान के एजुकेशन इंडिकेटर जो उनसे वो अभी तक दुनिया में सबसे बदतरीन है।
देखिए नदीम, जब आपका एजुकेशन का बजट आपकी जो ट्रेन है नई लाहौर में बनी है उससे कम होगा तो किस तरह से एजुकेशन ठीक होगी? जिन मुल्कों में एजुकेशन की प्रायोरिटी है, जो आपने पता नहीं मैकेंजी की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि नहीं, जो 10 मोस्ट सक्सेसफुल स्कूल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड हैं, अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ें तो पाकिस्तान में वो कौन सी चीज है जो उन रिपोर्ट्स में है? उन रिपोर्ट्स को अगर आप एनालाइज करें तो उनमें सबसे पहले ये है कि जो टीचर है उसका मुकाम अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा जो स्कूल हेड है, मैं तो सिर्फ एक छोटे से स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मैं एक मैक्रो एजुकेशन सिस्टम के बात नहीं कर रही।
रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स बता दीजिए।
उसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि आपका प्रिंसिपल जो है वो एक टीचर होना चाहिए, आपकी जो टीचर है उसको आप अच्छा मुकाम दें ताकि वो अपना घर चला सके, आप अच्छे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को चूज करें जो आपके स्कूलों में पढ़ा सके। उसका एक मेन पॉइंट ये है कि आपका इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका असेसमेंट सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए, आपकी जो टीचर है वो रोज क्लास में आए। अगर आप अच्छे सक्सेसफुल स्टेट स्कूल्स को देखें दुनिया में तो वहां जो चेंजेस लाते हैं लोग वो ये नहीं लाते सिर्फ कि बच्चे इम्तहानों में बड़े अच्छे नंबर हासिल करें, वो ये चेंज भी लाते हैं कि बच्चे स्कूल रोज आए। और बच्चों का स्कूल और प्राइमरी स्कूल तो एक ऐसी, आप समझ लें, इट्स लाइक अ गार्डन, वो एक बाग है, उसमें बच्चे खुश होके आएंगे तो बच्चे आएंगे। अगर उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उनको प्यार करने वाली टीचर मिलेगी, ना उनको अच्छा कमरा मिलेगा, ना पंखा मिलेगा, ना कुर्सी मिलेगी, तो वो क्यों आएंगे स्कूल में? सो ये तो बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान की एजुकेशन के जो कि सिंपल नहीं है, इट्स नॉट ए सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन। इसमें
रूही ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल इस वक्त आपके अंदाजे के मुताबिक कितने फीसद तालिबे इल्मों को अकोमोडेट कर रहे होंगे?
नदीम, मेरे पास इस वक्त लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन एक जमान, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, ये तो मुझे देख के फिर किसी वक्त आपसे बताना पड़ेगा, लेकिन बहुत ट्रेंड जो है इस वक्त गरीबों में भी आप देखें, बल्कि मेरी जो मेड है वो भी अपने बच्चे को अब प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराना चाह रही है। और मैं बीकन हाउस जैसे स्कूलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हर किस्म के प्राइवेट स्कूल की जो कि इस गवर्नमेंट एजुकेशन के फेल होने की वजह से पैदा हुआ है। उसमें कुछ अच्छे स्कूल भी हैं, कुछ बुरे स्कूल भी हैं, लेकिन गरीब और अमीर सब चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ें।
पर वही देखो, एक और भी प्रॉब्लम, जरूर प्राइवेट स्कूल में सब चाहते हैं, पर एक चीज प्राइवेट स्कूल ने भी नहीं खत्म की हालांकि प्राइवेट स्कूल, ये लोगों का आम कंप्लेंट है, अभी आपने देखा होगा कि लोग शबाज शरीफ के पास भी गए, उसने भी इस पर कुछ नोटिस लिया कि स्कूल स्कूल फीस तो बढ़ाते जाते हैं पर ट्यूशन वहीं की वहीं रहती है, तो बच्चा यानी कि दो दफा दिन में पढ़ता है और माँ बाप दो दफा तनख्वाह देते हैं, ट्यूशन देते हैं और एक स्कूल फीस देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी निजाम है, ये निजाम क्यों है?
देखिए ये इसकी भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स वजह है और इसकी वजह ये है सबसे बड़ी बात कि जो टीचर है वो प्राइवेट स्कूल में भी उतना वेल पेड नहीं है जितना उसको होना चाहिए। उसकी वजह से वो चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े, वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बच्चों को घर पे भी बुला के पढ़ाता है और उसमें जो एक गलत चीज आ गई है वो ये आ गई है कि वो जो टीचर है वो अपने ही बच्चों को कहता है क्लास में कि मेरे पास आके पढ़ो। दूसरा फैक्टर ये है कि ये एक ग्रेड रेस बन गई है और इसमें शामिल सब इदारे हैं, मैं तो कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस को भी इसका हिस्सा बनाऊंगी क्योंकि बच्चे अब चाहते हैं कि हम 10 ए लें, 11 ए लें, 12 ए लें, यूनिवर्सिटियां भी इसमें शामिल हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट और ये सारी एक रेस बन गई है। अब बच्चे जो स्कूल में भी पढ़ते हैं फिर घर जाके भी पढ़ते हैं, अब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, यहाँ जब से बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन लोग आए हैं उनमें कल्चरली एक एकेडेमिक एक्सलेंस की एक फीलिंग होती है, यहाँ पे भी अब बच्चे ट्यूशनों पे जाना शुरू हो गए हालांकि इनका स्टेट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, इनके स्कूल बहुत अच्छे हैं स्टेट स्कूल्स, लेकिन फिर भी कुछ कल्चर्स में बच्चे अभी यहाँ पे भी ट्यूशन पे जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो चूंकि एक रेस बन गई है और नंबरों पे ही सब कुछ होता है तो नंबर हासिल करने के लिए अब यूनिवर्सिटीज में दाखिला भी नंबरों पे होता है, अब बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी ग्रेड्स देखे जाते हैं तो माँ बाप अब चाहते हैं हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा ग्रेड लें। अब एक बच्चे ने 11 सब्जेक्ट्स के लिए इम्तहान दे दिया तो अगला बच्चा 23 सब्जेक्ट्स के लिए इम्तहान दे देगा, फिर 25 सब्जेक्ट्स के लिए दे देगा, मतलब ये एक रेस बन गई है और टीचर्स जो हैं वो इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा साइकिल है जो चल रहा है और इसको अभी तक रोक नहीं सके हैं हम लोग।
मैं अभी तक जो बात समझाऊं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तो स्टेट फेलियर है, स्टेट स्कूल्स माशाल्लाह अभी तक 2016 है ये बात हम करते आ रहे हैं 1960 से, पर स्टेट स्कूल 2016 में भी अभी तक बहुत ख़राब है और ठीक नहीं, उसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स हावी हो गए हैं, ऊपर आ गए हैं, उनकी बहुत तनख्वाहें हैं, बहुत फीसें हैं और वो फीस गरीब से अमीर सब देने को तैयार है पर स्टेट स्कूल में जाने को तैयार नहीं। पर आप जो कह रही हैं मैकिन्ज़ीज़ की रिपोर्ट के हवाले से कि टीचर और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन वो सब जगह ही अभी कमज़ोर है, पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स को अच्छी तनख्वाह नहीं मिली और पब्लिक स्कूल्स की तरफ आ जाए, पब्लिक स्कूल की क्या हालत है, आपका ख्याल है पब्लिक स्कूल ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते और अगर हो सकते हैं तो क्या मेजर खामी है जिनको ठीक करना चाहिए?
नदीम सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि बताऊं कि जो टॉप पे प्रायोरिटी सेट होती है ना, अगर आप यूके को देख लें उनकी एजुकेशन एक पॉलिटिकल एक आप समझ लें एक पॉलिटिकल सी चीज बन गई थी और गवर्नमेंट ने उसको टारगेट किया अपनी अपने लिए अपने यू नो अपने पॉलिटिकल जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एजुकेशन को टारगेट किया, उन्होंने कहा ये माँ बाप के बच्चे उनके लिए सबसे ज्यादा अजीज हैं इनको टारगेट करो एजुकेशन को इम्प्रूव करो तो हमें वोट ज्यादा मिलेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को ये भी एक रीजन नहीं नजर आता कि वो किसी तरह से पाकिस्तान की एजुकेशन इम्प्रूव कर लें, ये जब तक ऊपर से प्रायोरिटी नहीं बनेगी इसको हाथ ही नहीं कोई डालेगा। आप बताएं जो कि आपका बजट है एजुकेशन का उसको कौन हाथ डालेगा एजुकेशन में, यहाँ तो सब कुछ इंक्रीज करने की जरूरत है, यहाँ घोष स्कूल्स हैं, यहाँ टीचर्स की तनख्वाहें नहीं है, यहाँ स्कूलों की छतें नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं आते, कितना कुछ आप हैंडल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आप कोई भी जुबान ले लें, आप छोड़ दें अंग्रेजी को, आप भले उर्दू में ही पढ़ाएं लेकिन कम से कम बच्चों को सोचना तो सिखाएं, आपको सबसे पहले इम्तहान बदलना पड़ेगा। वो इम्तिहान आपके बच्चों का कुछ टेस्ट नहीं करता, ना उनकी थिंकिंग टेस्ट करता है, ना उनकी कोई स्किल टेस्ट करता है। और नेचुरली जब इम्तिहान ही आपका इतना कमजोर होगा तो फिर टीचर्स पढ़ाएंगे ही कुछ नहीं। तो ये एक पूरा साइकिल है।
आप जो करिकुलम सेट करती रही हैं और टीचर ट्रेनिंग करती रही हैं, उसमें आपने क्या सीखा है? करिकुलम में हमारे करिकुलम हमारे किस किस्म की हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग किस किस्म की और क्या होनी चाहिए?
देखिए टीचर ट्रेनिंग जो है ना, टीचर ट्रेनिंग बेसिकली जब आप इतने बड़े लेवल पे देखते हैं ना, तो आप टीचर की कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आप ये देखते हैं कि वो जो करिकुलम आपका है, जो निसाब है, उसको कितना इफेक्टिवली पढ़ा सकती है। अगर आपने सारी चीजें ठीक कर ली कि घोष स्कूल्स नहीं है, घोष टीचर्स नहीं है, टीचर्स क्लासरूम में आना शुरू हो गए हैं, बच्चे क्लासरूम में आना शुरू हो गए हैं, क्लासरूम में आपकी बेसिक नीड्स पूरी हैं, तो आप टीचर की तरफ आते हैं और टीचर को आप ये सिखाते हैं कि करिकुलम आ गया है और आपका करिकुलम भी उसके जो एम्स हैं, जो सबसे पहले जो जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने, आप कि वो जब सेट हो जाएंगे, ये इकोनॉमिक्स के साथ लिंक्ड है। आपकी जॉब्स किस किस्म की हैं, आप किस किस्म के बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कैसे बच्चे आप बनाना चाहते हैं, जब आप वो सेट कर लेंगे, फिर आप टीचर को उसके हिसाब से करिकुलम बनाएंगे, फिर वो टीचर को आप सिखाएंगे कि इसको तुमने कैसे पढ़ाना है, और फिर आप इम्तहान को उसके साथ लिंक करेंगे ताकि टीचर हिल ना सके, उसको एक आपने रास्ता बताना है। ये टीचर ट्रेनिंग होती है, उसकी कॉम्पिटेंसी उस रास्ते पे चलने के लिए बनानी है। ये आपके करिकुलम पे डिपेंड करता है। अगर आपका करिकुलम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएगा, अगर आपका करिकुलम अच्छी आपकी स्किल्स डेवलप करेगा, तो और वो फिर उस इम्तहान को आप उस हिसाब से बनाएंगे तो आप टीचर को पढ़ाएंगे।
रूही ये बताइए कि पब्लिक स्कूल्स जो थे उनका हमेशा से उनकी हालत ऐसी नहीं थी। उनकी मेरे जहां तक मेरा अंदाजा है, एक जमाने में कम से कम 1960s तक 70s तक वो काफी अच्छे खासा उनका स्टैंडर्ड था। तो ये क्या वजह है कि ये स्टैंडर्ड जो है ये गिरना शुरू हुआ? ये मेरे इत्तेफाक है कि ये गिर रहा है?
मेरे हिसाब से जी, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, आपने मेरे हस्बैंड ने 1950s में मैट्रिक का इम्तहान दिया था और वो कहते थे कि जो उनका मैट्रिक का इम्तहान है वो आज के मैट्रिक कैम्ब्रिज के इम्तहान के मुताबिक था। आपका सबसे पहले इम्तहान का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि आप उस इस इम्तहान के बिलबोते पे आप कहीं दुनिया में सक्सेसफुल अपनी एजुकेशन के साथ नहीं हो सकते। सबसे बड़ा
इसकी वजह क्या है?
मैं बताती हूँ आपको, उसकी वजह यही, इम्तहान गवर्नमेंट्स बनाती थी ना और अभी भी बनाती हैं। उस वक्त पाकिस्तान में शुरू में एक तो बहुत ज्यादा अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस उस वक्त भी था, तो पुराने सिस्टम्स कुछ सेट हुए हुए थे और वो इम्तहान की क्वालिटी और वो स्कूल्स जो थे जो डिलीवर करते थे उनमें भी बहुत ज्यादा, अब ये फैक्ट है, बहुत सोशली कॉन्शियस टीचर पढ़ाते थे। वो चाहते थे कि उनके तालिब इल्म कुछ सीखें, और चूंकि इम्तहान भी अच्छा खासा स्टैंडर्ड का होता था तो वो डिलीवर भी करते थे। और एक सोशल एक टीचर एक सोशल आप समझ लें एक लीडर होता था अपने जमाने का। उसके हाथ में जब बच्चा आता था तो वो कहता था इसको मैंने कुछ बनाना है, चाहे वो छोटा से छोटा स्कूल क्यों ना हो, बड़े से बड़ा स्कूल क्यों ना हो। आप देख लें पुराने वक्तों के हमारे जितने लीडर थे या जितने सक्सेसफुल लोग थे वो गवर्नमेंट स्कूलों से ही आते थे।
तो रूही अगर अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ ना अहली नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत चाहती नहीं है कि तालीम का मेयार अच्छा हो, तो आप क्या इससे इत्तेफाक करेंगी?
जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि कौन अपने इलेक्ट्रेट को एजुकेट करना चाहता है?
नहीं यार, ये अंजुम है दूरी में आप दोनों से पिछड़ी।
नहीं, मैं बिल्कुल इसके साथ अग्री करती हूं।
चले चले ठीक है, पर एक तरीके छोटी सी बात बताइए कि अगर अंजुम आप भी इस पर गौर करें, अगर आपको आज इंचार्ज बना दिया जाए एजुकेशन पॉलिसी का और आपको कहा जाए सब कुछ ठीक करे, तो आप बताएं मुझे आप क्या करेंगी और अंजुम आप क्या बताएंगे?
देखिए आपको आज बताया जाए कि आपने जी एजुकेशन इन पाकिस्तान ठीक करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यही आपका सवाल है ना। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं ये पूछूंगी कि क्या इख्तियारात है मेरे हाथ पास, क्या कर सकती हूँ।
अगर सब इख्तियार आपको दे दिए,
हाँ, क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं बजट बढ़ाऊंगी, एजुकेशन का बजट बढ़ाऊंगी, अच्छे से अच्छे लोग बुलाऊंगी, बैठ के पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगी कि क्या क्या खामियां हैं, एक सही किस्म की इवैल्यूएशन करवाऊंगी स्कूल सिस्टम की, उसमें मैं देखूंगी कि कहां कहां गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, कौन सी चीजें खराब हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा इख्तियार है और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है ना, तो मैं ये सारी एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगी और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको वक्त चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप से नीचे सबसे पहले ऊपर से ठीक करूंगी। आपको पता है एक प्रिंसिपल है कि अगर आपने चेंज लानी हो तो आपके टॉप मैनेजर्स जब तक आपके साथ नहीं होंगे, ये माइकल फुलन की रिसर्च है कि एक प्लान तभी सक्सीड नहीं करेगा जब तक आपके साथ मेजॉरिटी ऑफ योर सीनियर मैनेजर्स आर नॉट विद यू। तो आप देखें कि कितने लोग मुझे बदलने पड़ेंगे, कितनी चेंजेस मुझे लानी पड़ेंगी।
समझ गया, समझ गया। तो अंजुम आप बताइए आपका ख्याल है।
रूही, मेरे सहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि जब आपने ये कहा कि वो कौन सी हुकूमत है जो ये चाहती है कि उनकी इलेक्ट्रेट जो है वो,
नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा कि कौन सी हुकूमत, मैंने कहा हमारी हुकूमत क्यों चाहेगी,
कोई भी हुकूमत नहीं
नहीं, मगर अगर अगर कोई भी हुकूमत नहीं चाहती तो फिर मुझे इसका ख्याल आ रहा है जो आपने पहले कहा कि बरतानिया की जो आपने मिसाल दी।
मैं कोई हुकूमत की मैंने बात ही नहीं की, मैंने पाकिस्तान की हुकूमत की बात की, जो
पाकिस्तान चाहती है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत में कोई बुनियादी फर्क है?
जी बहुत बुनियादी फर्क है, वो नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, वो मुल्क को बनाते हैं, उनमें अभी भी डेमोक्रेसी की सेम्बलेंस है, उनमें अभी भी डेमोक्रेसी है, उनमें वो अभी भी इंडिया हमारे से पॉलिटिकली बहुत आगे है।
मगर मैं इस पे आ जाऊँ, एक सेकेंड अंजुम आप बताइए ना, ये जो सवाल हमने पूछा था अभी कि जी आप क्या करेंगे, रूही ने उसका जवाब दिया है जिसमें मैं क्या कहते हैं, लेट मी सॉर्ट ऑफ समराइज इट, आपने जो कहा है, आप कह रहे हैं कि पहले तो खर्चे बढ़ाने, पर खर्चे बढ़ाना ऑन इट्स ओन कुछ नहीं करेगा, ठीक है, आपने कहा आपने पूरा निज़ाम बदलना है, आपने सारे स्कूलों के प्रिंसिपल बदलने हैं, आपने माशाल्लाह आपने तो कहा ना कि आपने एजुकेशन सिस्टम की मैनेजमेंट को टोटली ओवरहॉल करना है,
बिल्कुल,
उसके अंदर आपने माशाल्लाह सबसे अच्छे प्रिंसिपल लेके आने, सबसे अच्छे टीचर लेके आने हैं, ठीक है, चाहे आप उनको सेफ्टी ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़े आपने उनको दे देनी है, ठीक है, चाहे आपको उनको जो भी कुछ करना पड़े, आपने स्कूल्स को अच्छे तरीके से बनाना है कि भाई उनके पास छतें भी हों, कमरे भी हों, लाइब्रेरीज भी हों वगैरह वगैरह, कंप्यूटर भी हों, सब कुछ ये हमें करना पड़ेगा अगर हम स्कूल का निज़ाम बदलना चाहते हैं। क्यों अंजुम आप इसमें क्या ऐड करेंगे?
नदीम, स्कूल के मसाइल तो बहुत वाजे हैं, वहाँ जो चीज़ें करनी है वो रूही ने जो कहा है बुनियादी चीज़ें तो वही हैं, स्कूल में टीचर अच्छे होने चाहिए, स्कूल का निसाब अच्छा होना चाहिए, पेडागॉजिकल टेक्निक्स नई होनी चाहिए, क्यूरिकुलम ओपन माइंडेडनेस को प्रमोट करना चाहिए, तो और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई हम बहुत कोई रेडिकल बातें कर रहे हैं, पहले ये हुआ करता था,
बिल्कुल हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता
था, जो हुआ करता था, बट एक सेकेंड, अभी आपका स्कूल सिस्टम सेक्रेटरी एजुकेशन चलाता है, ठीक है, सेक्रेटरी एजुकेशन टीचरों को ट्रांसफर करता है, आपके टीचर जो उनसे हैं वो इलेक्शंस के ऑफिशियल्स होते हैं, आपके टीचरों से और काम लिए जाते हैं, तो ये चीजें आप ठीक करेंगे कि नहीं, या वही रहने देंगे, सेफ्टी एजुकेशन भी ऊपर होगा और माशाल्लाह टीचरों की ट्रांसफर चीचावतनी से लेकर उसको भेज दिया, लाला मूसा लेके भेज दिया उसको कहीं और उनको इस्तेमाल किया इलेक्शनों में, अगर उन इलेक्शनों में ठीक काम नहीं किया उनको भेज दिया लासपेला, ये निजाम चलेगा कि नहीं चलेगा?
ये निजाम बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं ना कि टीचरों से एक्स्ट्रा ड्यूटीज ली जाती हैं, देखिए सारी दुनिया में स्कूल्स इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, टीचर्स की कई दफा ड्यूटीज भी लगती हैं, लेकिन ये सब एक बैलेंस में होता है ये सब चीजें। अच्छा, अब यहाँ अगर एक टीचर एक्स्ट्रा टाइम लगाती है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, वो उसको एक इंसेंटिव दिया जाता है कि तुम आकर ये काम करो। अच्छा, यहाँ पे जो आप टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, जो लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं वो स्कूलों के लोग होते हैं, उन्होंने क्लासरूम में पढ़ाया होता है, उन्होंने क्लासरूम को जाना होता है, उनको टीचर को ट्रेन करने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो अच्छे खासे मिलते हैं। उस जो स्कूल में जाके टीचर्स को ट्रेन करता है उसकी तनख्वाह आम टीचर से या हेड से भी कई दफा ज्यादा होती है। आपको ये सारी चीजें देखनी है, आपको टीचर के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देखने पड़ेंगे। ये आप उनसे काम बेशक लें लेकिन उनको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग करें ताकि वो एक सोशल, अपने अंदर एक सोशल जज्बा रख सके। एजुकेशन सोशल जज्बे के बगैर नहीं होती, आपको एक फलाही जज्बा रखना पड़ता है, और ये जब तक आपके टॉप से नहीं आएगा, आपके मैनेजर्स में नहीं आएगा, आपके टीचर्स और हेड्स में नहीं आएगा, और ये आप गरीब होके ये सब कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा अपना घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन।
पर ये मुझे एक और भी दो चीज आ गई ना, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, खान अकेडमी आ गई। खान अकेडमी माशाल्लाह सब सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो मुझे अब टीचर्स की जरूरत क्यों, मुझे स्कूलों की जरूरत क्यों?
नहीं, आपको पता है जितनी रिसर्च हुई है उसमें फेस टू फेस अभी भी जब तक कंबाइन नहीं होगा ऑनलाइन के साथ तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको टीचर की हमेशा जरूरत पड़ेगी। आप एक वीडियो को या खान अकेडमी को या जिस चीज को मर्जी किसी साइट को इस्तेमाल करें, जब तक आपको एक अडल्ट साथ चलना आपके साथ नहीं चलेगा तब तक आप सही सीख नहीं सकेंगे। सो टेक्नोलॉजी अपनी जगह है लेकिन आपको टीचर की हमेशा जरूरत रहेगी।
क्यों अंजुम, आप मेरी प्रोपोजिशन से एग्री करते हैं कि नहीं करते?
नहीं नदीम, मेरा मुझे इससे इत्तेफाक है कि टीचर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ। खास तौर पे बहुत कम उम्र की जब आप तालीम की बात कर रहे हैं वहां तो यकीनन आप टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते। मगर मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था, मैंने ये सवाल शुरू में इसीलिए पूछा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितने फीसद हमारे तालिब इल्मों को केटर कर रहा है। जो तुम एक तरह से इनडायरेक्टली सोल्यूशन बता रहे हो वो ये कि हम पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल अबॉलिश ही कर दें और सब चीज प्राइवेटाइज कर दें, तो वो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं।
नहीं जी, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सॉरी मैं काट रही हूँ बात, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अभी भी मेजोरिटी बच्चे हमारे पब्लिक सेक्टर में ही जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर अभी भी बड़ा स्मॉल फ्रैक्शन बच्चों का केटर कर रहा है, तो हम पब्लिक सेक्टर को अबॉलिश नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी पब्लिक सेक्टर एजुकेशन अबॉलिश नहीं हुई।
पर मेरी प्रोपोजिशन ये आप दोनों से कि आप कह रही हैं एजुकेशन बजट बढ़ा दें, मैं कहता हूं इतना नाकिस पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम है, आप कह रही हैं हम उसको और पैसे दें।
नहीं, आप इस सिस्टम को पैसे दें लेकिन वो पैसे कहाँ इस्तेमाल होना, ये भी तो देखने की बात है ना। आपको शुरू के सालों में वो पैसे शायद अपना ब्लूप्रिंट बनाने के लिए इस्तेमाल करने पड़े। ये तो नहीं मैं कह रही कि उसी नाकिस एजुकेशन सिस्टम को आप फिर और फीड करते चले जाएं। आप एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान में आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप वो पैसे इस्तेमाल करें ना, लेकिन वो प्लान बनाने के लिए आपको माहरीन लाने पड़ेंगे। यहाँ तो माहरीन आते हैं वो बेचारे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये हमें कब बुलाएंगे, हमसे कब पूछेंगे, और अगर पूछ भी लेते हैं तो खुद पूछ पूछ के आके बैठ जाते हैं और आगे कुछ पास ऑन नहीं करते।
ये बताइए, मैं आपसे और नदीम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तालीम का जो नाकिस निज़ाम है, ये और मुल्कों की तरह सियासी इशू क्यों नहीं बन गया पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में सियासी इशू इसलिए नहीं बना, देखिए ये एक साइकिल है। जो लोग इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में कि जो आप लोग खुद कहते हैं क्लास सिस्टम्स बन गए, एक तरफ लोग हैं वो इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके अपना नाम कमाना चाहते हैं, बाहर जाके नौकरियां करना चाहते हैं, और कई लोग पाकिस्तान में वापस आके अपनी बिजनेसेस खोल लेते हैं, वो भी पैसे कमाने के लिए। कंज्यूमर बिजनेसेस आप देख लें कितनी बन रही हैं। एक वो तरफ हो गई, एक तरफ गरीब अपना पेट ही बेचारे भरते रहते हैं, उनको एजुकेशन की समझ ही नहीं है, और अगर आप थोड़ी बहुत समझ है तो वो बच्चे बेचारे इतनी मुश्किलों में मैट्रिक कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं। कभी किसी ने ये अंदाजा लगाया है कि जो ये बच्चे छोटे छोटे शहरों से एफएससी या मैट्रिक करके बेचारे इतनी मुश्किलों में नंबर हासिल करते हैं, ये कहाँ जाते हैं, इनके साथ बाद में क्या होता है? ये इतने इतनी बिखर गई है ये सब चीजें कि लोग गुर्बत में, और पहुंच किसी की नहीं है ऊपर, रिश्वत है, करप्शन है, ये सब चीजों ने मिलके लोगों के मुंह बंद कर दिए। और जो लोग बाहर एस्केपिज्म ढूंढते हैं तो बाहर चले जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं।
मैं नदीम, मेरा ये ख्याल है, और ये मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ अभी तक बादशाहत का जो है निज़ाम कायम है, और सियासी एक तरह से जो सोच है जो कि आवाम अपने हुक्मरानों को अकाउंटेबल रखती है, उसकी बहुत कमी है। और मैंने इसीलिए ये सवाल पहले हिंदुस्तान के मुताल्लिक भी पूछा था, क्योंकि जो ये इनकी असर की रिपोर्टें आती हैं तो हिंदुस्तान में भी तालीम का मेयार उतना ही कमजोर है जितना पाकिस्तान में है।
पर एक फर्क तो है ना, वो ये है, नहीं एक फर्क, सॉरी दोनों दुनिया फर्क ही, मैं कह रहा हूँ एक चीज और है, वो ये है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान में, एक बंदा है टूनी, उसकी किताब थी भी रिसेंटली कि जी इंडिया में उसने बात की कि प्राइवेट एजुकेशन का निज़ाम पाकिस्तान की तरह बहुत फैल चुका है।
हाँ।
100-150 रुपए के भी स्कूल है, वो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में फैल चुका है कि 100-200 रुपए के स्कूल हैं। मेरा ख्याल किसने एक रिपोर्ट किया, असर या अपनी किसी ने की थी एक, तो एक डिमांड फॉर एजुकेशन तो है। गरीब से गरीब बंदा भी अपने बच्चे को अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे दे के पढ़ा रहा है, ठीक है, तो डिमांड तो है। अब मसला ये है कि सप्लाई रिस्पॉन्स का मसला है, तो आप मुझे बताइए।
नदीम, एक मैं इस पे बात कहूं कि ये जो डिमांड है इसको हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये डिमांड फॉर एजुकेशन है या डिमांड फॉर क्रेडेंशियल है, क्योंकि अब कोई सरकारी नौकरी जो है वो आपको नहीं मिल सकती जब तक कि आपके पास कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है। तो और वो जी
सॉरी मैम, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अब ये भी देखिए एक गलत चीज है, आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही क्यों, यहां भी सोचने की जरूरत है। जब मैं एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करती हूँ ना, तो मैं ये देखती हूँ कि आप अपनी इकोनॉमिक्स को देखें और आप देखें कि किस किस किस्म की आपको एजुकेशन दरकार है। हर बच्चे को मैट्रिक नहीं दरकार, कईयों ने इलेक्ट्रिशियन बनना है, कईयों ने कारपेंटर्स बनना है, कईयों ने प्लम्बर्स बनना है, कईयों ने और टेक्निकल चीजें सीखनी है, कईयों ने आर्टिस्ट बनना है, उनके लिए एक फर्क चैनल होना चाहिए। तो तभी मैं ये कह रही हूं ना कि ये एक कर देना, ये बड़ी एडहॉक चीजें हैं कि चलो जी अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो तभी आप कह रहे हैं
इसमें, नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एजुकेशन की सप्लायर डिमांड में बहुत मिसमैच है, जिस तरह के स्किल्स चाहिए और जिस तरह की तालीम हम दे रहे हैं उसमें बहुत मिसमैच है। मगर ये भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जैसे आमतौर सब लोग जो हैं वो उनकी एस्पिरेशन ये होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो सरकारी नौकरी के लिए तो अब क्रेडेंशियल आपको चाहिए,
अब हर अच्छा सरकारी नौकरी क्रेडेंशियल सिर्फ एक बेसिक, आप बेसिक स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो बेसिक एक स्कूल एजुकेशन की बात करता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन भी फर्क फर्क किस्म की हो सकती है। कई लोग सिर्फ अच्छा, अब नंबर दो ये है कि सरकारी नौकरी ही क्यों करें और क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटीज। सरकारी नौकरी एक हद तक हो सकती है ना, यहां मैं नदीम के साथ अग्री करती हूँ कि हर चीज सरकार के ऊपर नहीं आप रख के तोल सकते कि जिस हर चीज नौकरी भी सरकारी हो, एजुकेशन भी सरकारी हो, सब कुछ सरकारी हो।
मैं तो उनके सर पे नहीं रख रहा, मैं तो सिर्फ आप एस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ।
मेरा नहीं ख्याल है कि हर बंदे की ये एस्पिरेशन है, मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। हर बंदे की ये एस्पिरेशन नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी मिले, उनकी एस्पिरेशन ये है कि उनको घर चलाने के लिए नौकरी मिले।
देखिए मेरा ख्याल है कि ये बड़ी वसी डिबेट है और आई थिंक एजुकेशन पॉलिसी पे जाने की जरूरत है और एजुकेशन को समझने की जरूरत है। आई थिंक जो रोही ने बात की अंजुम, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें एजुकेशन के सब्जेक्ट को हम बहुत लाइटली लेते हैं। हम हर बंदा हमारे मुल्क में एजुकेशनिस्ट है और हर बंदा कहता है एजुकेशन बजट बढ़ा दो तो सब ठीक हो जाएगा। रूही ने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि हमें एजुकेशन के सब्जेक्ट पे भी बहुत गौर करने की जरूरत है। और जैसे अंजुम कई दफा ये आया है हमारे पॉडकास्ट में बात कि हमें एजुकेशन के लिए भी बहुत बड़ा थिंक टैंक चाहिए जो सोचे इसके बारे में और बात करें एजुकेशन किस किस्म की चाहिए, क्या है हमें एजुकेशन के, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी एजुकेशन की स्ट्रीम्स क्या हैं, हमारी एजुकेशन के रिटर्न्स क्या हैं, हमारी एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारे एजुकेशन का करिकुलम क्या है, हमारी टीचर्स किस किस्म के, वगैरह वगैरह हज़ार सब्जेक्ट्स हैं जिन पर रिसर्च की ज़रूरत है और हमें इस पर सोच की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल ठीक है, नहीं है पहले तो सोच चाहिए फिर बाद में एक्शन चाहिए, हम पहले एक्शन कर लेते हैं सोच बाद में करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको अब यहाँ छोड़ दें रोहित बीबी, क्योंकि काफ़ी लंबी डिस्कशन हो चुकी है। इंशाल्लाह इस पर फिर We'll take it up again at some point. Any last thoughts, yeah?
नहीं बस थैंक यू सो मच नदीम, ये बहुत इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक इस पे बहुत बात करने की जरूरत है और हम समझते हैं हर बंदा, जैसे तो आपने पहले कहा कि हर बंदा ये सोचता है कि भाई एजुकेशन में चम्मच तो मैं चला ही लूंगा, पढ़ा सकता हूँ मैं, मुझे मैंने स्कूल हाई स्कूल कर लिया अब मैं पढ़ा सकता हूँ, या मुझे सब कुछ पता है एजुकेशन के बारे में, मेरे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं मुझे सब पता लग गया। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको बड़े गौर और फिक्र के साथ, लेकिन सबसे पहले आपके पास जैसे मैंने पहले कहा आपके जितने टॉप के लोग हैं जब तक वो आपके साथ आप उस तरह की सोच नहीं रखेंगे जिस तरह की एजुकेशन आप लाना चाहते हैं, और सारे इकोनॉमिस्ट, सारे एजुकेशनिस्ट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, आप सीईओस प्राइवेट कंपनीज के बुलाएं, थिंक टैंक बनाएं, बैठ के सोचें पाकिस्तान की एजुकेशन उसकी इकोनॉमिक्स को किस तरह हेल्प कर सकती है और फिर वो ब्लूप्रिंट बनाएं।
इसमें अंजुम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लो एक मेथोडी को कि इसमें से मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे बच्चों को, हम काफ़ी कोशिश करते रहे हैं पॉडकास्ट में कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो इसको सुन रहे होंगे उनको कोई रिसर्च टॉपिक्स मिले, तो मेरा ख्याल है इसमें भी काफ़ी रिसर्च टॉपिक्स निकलते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए कि वो एजुकेशन पर रिसर्च किस किस्म की कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सर्वे डेटा लेके और रिटर्न टू एजुकेशन या कोई ऐसी कोई इस किस्म की रिग्रेशन प्लान कर लें, और भी तरीकेकार हो सकते हैं एजुकेशन के रिसर्च के बारे में। तो आप बताइए इस कॉन्वर्सेशन के बाद आप क्या रेकमेंड करेंगे उनको रिसर्च सब्जेक्ट्स जो वो टेकअप करें ताकि ये बात को आगे बढ़ाएं, हम समझें कुछ एजुकेशन के निजाम को।
नदी मुझसे सवाल कर रहे हैं या रूही से कर रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले तो ये इसकी जरूरत है कि ये देखें कि ये तालीम का मैार बतदरीज गिरा क्यों है, इसकी वजूहत क्या है। जब वो हमें बात समझ में आएगी तो फिर हम जो है कुछ ये रिकमेंडेशन कर सकेंगे कि क्या चीज गलत हुई और क्या चीज सही करनी चाहिए। उसके बाद फिर इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है कि दो चार पांच छह मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीम्स चल रही हैं उनका क्या असर पड़ रहा है हमारी सोशो इकोनॉमिक उस पे सिचुएशन के ऊपर। और मेरे ख्याल में ये अभी हमने इस पे ज्यादा वो नहीं की बात, मगर ये इंग्लिश मीडियम जो है उसमें से तालीम शुरू करना, इसके ऊपर भी बात करने की बहुत जरूरत है।
रिसर्च ये भी मेरा एक मौजू रहा है रिसर्च का, कि कौन सी जुबान में बेसिक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कौन सी जुबान में होनी चाहिए, और ये भी एक बहुत अच्छा मौजू है बात करने के लिए, कभी इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जी
दूसरा जो मैं ऐड कर दूं उसके अंदर, आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है समझने की, हमारी एजुकेशन पॉलिसी है क्या, कैसे बनती है, कब बनती है, क्यों बनती है वगैरह, प्रोसेस पे। तीसरी जो हमने हर चीज में देखा है, प्रोसेस बहुत जरूरी है समझना कि सरकार डिसीजन लेती कैसे है। दूसरी चीज आई थिंक मुझे जो समझ आई है बात रूही की बात से समझ आई, कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे और टीचर्स के हालात पे बहुत गौर पार करने की जरूरत है, कोई नहीं रिसर्च उसके बारे में।
देखें नदीम, मैंने जो कहा कि इतनी दुनिया में इदारे हैं, जैसे ये मैकेंजी एंड कंपनी है और इस तरह के कितने इदारे हैं जो सारे जाके रिसर्च करते हैं इस किस्म की और गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इस तरह आगे बढ़ें। तो हमारे पास भी तो ये सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा वक्त निकाल के इनमें से किसी भी इदारे को बुला ले और कहे आओ इवैल्यूएट करो हमारे सिस्टम को, जैसे अंजुम कह रहे हैं, और बताओ कि पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, उसमें वो सारी कंसल्टेशंस भी आ जाएंगी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, सब चीजें आ जाएंगी। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ वक्त निकालने की बात है।
और रूही ये बारहा हो भी चुका है, अभी आपको भी मालूम होगा कि ये जो सर माइकल बार्बर की रिपोर्ट आई है वो हालिया की, दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट उसका कुछ ऐसा नाम। तो अब हम कितनी रिपोर्टें जो है वो
इस दफा मैंने सुना है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन हुई थी आईएफसी की, उसमें पंजाब की एजुकेशन का बहुत चर्चा था। मैं खुद तो गई नहीं उस कॉन्फ्रेंस में, मगर मेरे कंपनी से गए थे लोग। तो पंजाब में थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स हुए हैं, कुछ किया है लोगों ने, लेकिन फिर भी वही बात है, दे आर एडहॉक। आज कह देती है कि इन रिट्रोस्पेक्ट पिछले साल से सारा असेसमेंट बदल गया। एक दफा इन्होंने क्या किया, कहा कि सारा कंटिन्यूस असेसमेंट होगा और टीचर्स जो है वो डे टू डे रिकॉर्ड्स रखेंगे स्टूडेंट के, वो जाएंगे, वो ऐड होंगे, फिर पांचवी के इम्तहान के रिजल्ट आएंगे, आठवीं के इम्तहान के रिजल्ट आएंगे। एक साल कह दिया जी इस अगले महीने से सब बच्चे पांचवी का इम्तहान लेंगे गवर्नमेंट का, आठवीं का लेंगे। इस तरह थोड़ी होता है, पांच पांच साल के प्लान बनते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर सपोर्ट किया जाता है और फिर जाके कहीं चेंज आती है। एजुकेशनल चेंज तो बिल्कुल बहुत स्लो होती है और उसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है, क्योंकि सोच बदलनी पड़ती है लोगों की। ये सिर्फ एक सिखाने से नहीं है कि आपने छुरी इस तरह चलानी है और कांटा इस तरह चलाना है, ये सोच बदलने की बात है।
देखिए अंजुम, फिर आखिर में बात वही निकलती है हमेशा जो हमेशा निकलती है, हमें सोच विचार रिसर्च चेंज मैनेजमेंट की सब चीजें चाहिए। इसके लिए हुकूमती प्रोसेस, इसके लिए हमारा रिसर्च प्रोसेस, हमारे रिसर्चर्स को चकन्ना होना, होशियार होना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो चलिए अब ये कॉन्वर्सेशन आगे चलाते रहेंगे। एनी लास्ट थॉट्स अंजुम?
नहीं नदीम, ये बुनियादी चीज है, इस पे बहुत गौर फिक्र और सोच विचार की जरूरत है, और हम इस पे वापस आइंदा दोबारा जरूर आएंगे।
थैंक यू रूही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।
थैंक यू,
खुदा हाफिज़।
सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।